जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर
बड़ी सभी लोग
Hare Krishna.
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः
हरे कृष्ण तो आप सब मित्रों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित सात दिवसीय इस कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कैसे कलयुग जैसे समय में भी हम सब लोग यहां पर भगवत कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं। वास्तव में यही है संसार का मांगलिक कार्य, मंगल कार्य। संसार में कुछ लोग शुभ कर्म करते हैं, परंतु वास्तव में वह शुभ कर्म शुभ नहीं होते हैं, अशुभ बनकर खड़े रह जाते हैं। आप देखिए, किसी का भी विवाह हो तो कहते हैं शुभ विवाह, परंतु वह शुभ बहुत कम दिन के लिए शुभ रहता है। और भी संसार के लोग बहुत बहुत कार्य में, कर्म में लगे हैं, परंतु सब लोग अपने अपने कार्य को शुभ मानते हैं। शराब पीने वाला यही सोचता है कि मैं सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, परंतु शुभ कार्य किसे कहते हैं, मंगल कार्य किसे कहा जाता है, इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ा शुभ कार्य उसे कहा जाता है जिस कार्य से सब लोग प्रसन्न हो, जिस कार्य से जगत में रहने वाले सभी लोगों का फायदा हो, जिस कार्य से सभी लोगों को बेनिफिट हो, ऐसे कार्य को शुभ कार्य कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा, ऐसा डॉक्टर बनूंगा कि संसार के सारे रोग को मिटा दूंगा। विचार किया जाए तो संसार के सभी रोगों को मिटाना ये शुभ कार्य नहीं है, क्योंकि यदि आपने संसार के सभी रोगों को मिटा दिया तो बेचारे डॉक्टर भूखे मरेंगे। और शुभ कार्य की डेफिनेशन यह है जिससे सब लोग खुश रहे, जिससे सब लोग प्रसन्न रहे। कुछ लोग यदि सोचें कि हम लोग भारत में ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे चोरी ही नहीं होगी, यदि ऐसा कार्य कर दिया तो जितने भी पुलिस वाले हैं बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो ये सब कार्य शुभ कार्य नहीं माने गए हैं। वास्तव में शुभ कार्य यह है जब एक व्यक्ति शास्त्र की बातों को बोलता है और सैकड़ों लोग उसे सुनते हैं, यह है संसार का सबसे बड़ा शुभ कार्य। क्योंकि सबसे पहले इस कार्य में न तो कोई लॉस है, न तो कोई नुकसान है, और ऊपर से इस कार्य से पूरे जगत को लाभ होता है। यह है शुभ कार्य। मित्रों, शुभ कार्य करने के लिए हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा कार्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। वास्तव में हम सब यहां पर बैठे हैं, कोई साधारण व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकता है। बहुत बहुत जन्मों से सुकृति की है, बहुत बहुत जन्मों की सुकृति और पुण्य का जब उदय होता है तब जाकर किसी व्यक्ति को इस भागवत कथा में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। साधारण व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकता है। परम सौभाग्य है हम सबका, और उसमें भी ऐसे घोर कलयुग में हम ये दिव्य कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में इसके पीछे एकमात्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी कृपा से आज न केवल भारत अपितु देश विदेश पूरी दुनिया में सब लोग इस दिव्य ग्रंथ का और दिव्य प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। विचार करो मित्रों, आज से 500 वर्ष पूर्व यदि किसी को यह भागवत का श्रवण करना होता था, चाहे राजा हो या रंक हो, इस भागवत का श्रवण करने के लिए घर बार लाखों लाख की संपत्ति, गाड़ी बंगला नौकर चाकर पुत्र पत्नी सब को छोड़कर जंगल में जाते थे, और जंगल में जाकर इस प्रवचनों का इस ग्रंथ का श्रवण करते थे। राजा रघुगण जो शोभिर देश का राजा था, गुजरात का राजा, परंतु यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ छोड़कर गंगा सागर जा रहा था। भागवत के मूल वक्ता महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी दुनिया के राजा थे, परंतु भागवत श्रवण करने के लिए सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस भागवत का श्रवण करने के लिए घर बार छोड़कर निकल जाते थे, तब जाकर यह भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता था। परंतु देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, न तो घर को छोड़ना है, न पत्नी को छोड़ना है, न पुत्र को छोड़ना है, न धन को छोड़ना है, न स्कूल को, कॉलेज को, न ऑफिस को छोड़ना है, हमारे अपने घर पर अपने मोहल्ले में यह भागवत कथा हो रही है। परम सौभाग्य, और यह सौभाग्य एकमात्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी विशेष अनुकंपा से हम सब लोग एक छत के नीचे बैठकर इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। गुड़ाकेश प्रभु का स्वागत करते हैं महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु जी हमारे श्री राधा गिरधारी मंदिर के वरिष्ठ भक्त हैं। श्री राधा गिरधारी मंदिर इस्कॉन कॉन्ग्रीगेशन के लीडर हैं, शिक्षा गुरु हैं। अभी दो दिन पहले वे विदेश से यहाँ पर केन्या से आए हैं, और हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में उनकी उपस्थिति है। तो हम हमारे छोटे मुख से आपको क्या सुनाएंगे, हम गुड़ाकेश प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, कृपया करके कुछ घड़ी के लिए आप हमें उपदेश दीजिए।
अमज्ञानतिमिदन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले सजं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण अरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च। मुखं करौति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतां शरत्पङ्गौर्मम मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्वदाम्बोजो राधामदनमोहनो। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे
हरे राम 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 हरे।
तो जैसे मैं अभी इस हॉल में एंट्री किया वैसे ही लाल गोविंद प्रभु श्रील प्रभुपाद महाराज की सराहना कर रहे थे, शब्द सुनाई पड़ा कि हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि हम लोग ऐसे महान साधु की संगति को प्राप्त करते हैं। वस्तुतः इस संसार में अभी तक जो हमारी समझ थी कि धन संपत्ति पुत्र परिजन इत्यादि या इस संसार में कुछ जस वगैरह लाभ करके व्यक्ति अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं और प्राय हमारी समझ यही थी जिनके पास ज्यादा संपत्ति जिनके पास ज्यादा धन धान्य या जिनके पास ज्यादा ख्याति या जिनके पास ज्यादा पावर तो उसको हम लोग सद्भाग्य समझते थे। वस्तुतः ये सद्भाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य के कारण मिलता है। किस लिए? जब जीव का दुर्भाग्य जितना तगड़ा होता है उतना ये सारी वस्तु मिलती है, इसको दुर्दैव कहते हैं। चैतन्य देव कहते दुर्दैव इदृशम यह जानी न अनुराग, क्योंकि ये जो समस्त वस्तु गिनाई गई उस जिसके कारण भगवान में अनुराग नहीं होता है उनको दुर्भाग्य कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि जितना ये जो मैंने जो वस्तु गिनाया वो जिनके पास जितना ज्यादा उन लोग के पास उतना कम टाइम। किस लिए? इसलिए सत्संग के लिए उनके पास समय कम होता है, बाकी उनके पास समय और ज्यादा बढ़ाने के लिए समय है, उनको भोगने के लिए समय है और उनकी वाहवा लेने के लिए समय है। लेकिन मूलभूत आत्मिक वस्तु के लिए आत्म तत्व के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पास थोड़ा सा भी समय माया देती नहीं है, अतः उनको सद्भाग्य कहा जाएगा दुर्भाग्य? वस्तु तो ये दुर्भाग्य है। उनको श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह बहुत तरीके से इसको वर्णन किया गया है और ये इस सत्य मानिए कि बिल्कुल स्वप्न तुल्य ये वस्तु हमारे हाथ में आती है। और जैसे स्वप्न में व्यक्ति अपनी जात को भूल करके अपने पुराना शरीर जो सोया 9 बजे जो शरीर सोया था उसको भूल जाता है और आगे वो शरीर उठेगा भविष्य में वो भी भूला रहता है, और सपन में जो एक शरीर होता है उन्हीं को सब कुछ समझ करके और व्यक्ति उन्हीं में बिजी हो जाता है, लेकिन वो तो सपन है। तो ठीक उसी प्रकार भूतकाल के हमने कितने शरीर बदली कर लिए या आत्मा के रूप में हम लोग सनातन वस्तु हैं जिनका जन्म मरण जरा व्याधि कुछ नहीं है और जो अशोक अमर और अभय है। अभी तो केवल नाम बढ़ रह गया है, किसी का अशोक ना किसी का, और सारा शोक का घर वही है जो अशोक के नाम रखा है। अभी नाम बढ़, बाकी हमारी प्रायोरिटी है, हमारी गुणवत्ता क्या है? अशोक अभय और अमृत, यही हमारी पहचान है। अमृत का अर्थ हमको मरण नहीं है, लेकिन ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो एक व्यवहारिक जीवन हमारे पास है वही उन अमरत्व को भूल करके व्यक्ति एक स्वप्न में जैसे निद्रा के कारण प्रवेश करते हैं और उनको स्वप्न में कोई राजा बन जाता है या कोई कुछ बन जाता है, लेकिन वो स्वप्न स्वप्न है, एक स्वप्न आंख जो मिलते ही चालू होता है, जब हमारा निद्रा चालू हुआ स्वप्न चालू होता है और खुलने पर वो टूटता है और इस प्रकार ये बंद होने पर टूटता है। आंख बंद हुई वो टूटता है, बाकी ये सपना है। तो इन स्वप्निक अवस्था में हम लोग ये दुर्भाग्य को लेकर के आत्म तत्व विषय जिज्ञासा नहीं करते हैं। उसका कारण केवल परिस्थिति है। वो परिस्थिति का अर्थ, किसी के पास धन है तो किसी के पास यश है तो किसी के पास क्या क्या है, बस उसी में व्यक्ति रमे रहते हैं। और इधर जो उनका स्वप्न है वो तो कभी भी आंख मूंद जाएगा, स्वप्न टूट जाएगा। वो आंख खुल जाता है टूटता है, और ये आंख बंद होता है टूटता है। इसीलिए ये दुर्भाग्य के अलावा सद्भाग्य हम सब लोग का है। श्रीलाल गोविंद जी में एंट्री लिया तब वो बोल रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि श्रीमद् भागवतम जैसे जो अशोक अमर और अभयता प्रदान करने वाला ग्रंथ है वो ग्रंथ हम लोग को मिल रहा है। वस्तुत तो जीवन में जब तक हमारे जीवन में साधु संत नहीं आते हैं तब तक ये सद्भाग्य हमारा खुलता नहीं है। एक बहुत सुंदर श्लोक हमारे नीतिकार ने लिखा है, चाणक्य पंडित इस श्लोक को लिखे हैं। वो कहते हैं कि नित्यम नहीं, वो कहते पूर्णा शून्यायति पूर्णायत, कहते हैं व्यक्ति का जीवन यहां पर शून्य है। तो जब साधु मिलते हैं तो कहते हैं कि जब साधु जीवन में आते हैं तो तुरंत साधु को मिलते ही जो शून्यता है वो पूर्णता में बदल जाती है। हम सब लोग की शून्यता क्या है इसके ऊपर विचार किया जाए थोड़ा। वो शून्यता यही है कि हम ये खोज रहे कि मुझे कोई प्रेम करे, कोई ऐसा व्यक्ति मेरा प्रेमी मिल जाए कि बस दोबारा कोई दूसरा प्रेमी खोजना नहीं पड़ेगा। तो खोजिए उनको लेकिन तब तक हम दूसरी जगह वो प्रेमी को खोजते हैं जब तक श्रीमद् भागवतम में एंट्री नहीं लेते। जैसे साधु मिले तो तुरंत श्रीमद् भागवतम उन भगवान विषय की कथा मिलेगी, और वो कथा हमारा जो अनंत अनंत जन्मों से शून्य हृदय थे, शून्याय पूर्णायति और मृतिर अमृत तत्वाय कल्पते और विपदा संपदा इव आभाति, विद्वत जन समागत है। अभी माइंड में चढ़ा वो श्लोक है। वो कहते जब विद्वत जन भगवान के जो विद्वान भक्त लोग है वो भक्त लोग जैसे जीवन में आते हैं तो तुरंत तीन चीज होता है। एक, वो अनेक जन्म का जो हमारा प्रेमी का खोज है कि हम और हमारे प्रेमी के अभाव में हमारा हृदय जो शून्यता का अनुभव कर रहा है वो साधु को मिलते ही वो शून्यता की पूर्ति होती है। क्या होता है, कैसे पूर्ति होती है, क्या हमारे पास कमी है, सज्जन हमारे संबंधी की कमी है, पूर्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी जो डिमांड है वहां पूरी नहीं होती है, उस संबंधियों के पास वो शून्यता की पूर्ति नहीं होती है। वो शून्यता क्या है, सुख का अभाव, हमें कोई प्रेम करे, प्रेमी व्यक्ति आज तक में देखो कि सब लोग काम ही है, उनको भी कुछ चाहिए इसलिए कंडीशन वाला प्रेम है, और इधर से भी कुछ चाहिए इसलिए दिन में 10 बार झगड़ा होता है पति पत्नी, और पति पत्नी मरते हैं दिन में 10 बार। अब दूसरे का छोड़ दीजिए, जब पति पत्नी में इतना गुड प्रेम होता है लेकिन वो भी सामने आ जाते हैं दिन में 10 बार, किसी को दूसरी रुचि है उसको दूसरा चाहिए। ये जो सारी रुचि है ये कृष्ण भावनामृत है, और इन कृष्ण भावनामृत में अभाव में हमारा जो हृदय है वो कामना में परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है, हमारा कृष्ण प्रेम जो हमारा असली संबंधी जीने के कारण वो जो प्रेम कृष्ण था वो किसके कारण परिवर्तन हो गया, उनकी सेवा भूलने से। हा तो तब क्या होता है, वो कामना में परिणित होता है, और जो कामना में परिणित हृदय वो शून्यता को प्राप्त होता है, वो कुछ भी लेकर के भी उनकी पूर्णता है। शून्यतम पूर्णायत, शून्यता की पूर्ति होती है साधु जीवन में आते हैं तब। धन्य है आप लोग, लाल गोविंद जैसे साधु आपके जीवन में आए हैं श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से। ऐसे बच्चे लोग अभी से देखो जहां पर भोग का आयुष्य है और उन आयुष्य में इतना सुंदर भागवतम आप लोग को दिया जा रहा है, ये प्रभुपाद जी की महती कृपा है। बाकी इस प्रकार ये इतनी युवानी में किसी को पलट देना सामान्य लोगों की, तो ठीक बोल रहे थे। और होता क्या है, उन कामना के कारण व्यक्ति जलता रहता है, ये चाहिए वह चाहिए, लेकिन तिस पर भी तुष्टि नहीं होता है, पूर्णायत कभी नहीं होता है। कभी पूर्णता हुई आपकी? बस बस अभी भोग नहीं चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। और कितने संबंधी बनाए फिर भी जो वस्तु संतुष्टि आनी चाहिए वो नहीं आती है। जब तक जीवन में साधु नहीं आता है, चाणक्य पंडित कहते हैं तब तक भूल जाइए कि आपके पास कोई साधु मिलते ही एक कमी की पूर्ति होती है। व्यक्ति अकेला फील करता है इनको कुछ चाहिए, तुष्टि नहीं, तुरंत तुष्टि होता है, क्योंकि वास्तविक सिद्धांत मिलना चालू होता है। और वो बता देते, अर्थात ये कहिए कि आपको स्वप्न चल रहा है किसी को बिजनेसमैन का, किसी को सुंदर सर्विस इत्यादि का, अच्छी कंपनी में लार्सन टबरों में कुछ इंजीनियर, यह वो स्वप्न है, तो फिर लालगुन जैसा साधु आकर देखा उठ उठ बोलते ये तो तेरा आंख बंद होते ये स्वप्न पूरा होगा। तो स्वप्न पूरा होते ही नौकरी क्या रहेगी, जब ये शरीर भी नहीं रहेगा नौकरी कहां रहेगी, है कि नहीं? अब पुनः भिखारी की तरह रोड में आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसकी पूर्ति होती है एक मृत्यु अमृतत्वाय कल्पते और विपदा संपदा ही वहा भाती। जब साधु जीवन में आए कैसे पता चलेगा, तो बोलते जो विपत्ति होती है इस संसार की, बड़ी बड़ी विपत्तियां वो महासंपद का रूप लेकर के आती है। जब जीवन में विपत्तियों को संपत्ति करके माइंड मानने लगता है, तब मानना चाहिए कि वहां रियल साधु संगति मिल रहा है। आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आप लोग इस भागवत ज्ञान बढ़ता जाएगा और साधु संगति आप करते जाएंगे, तो आप लोग फील करेंगे इसी बात को, बहुत बड़ी विपत्ति को आप महासंपद समझेंगे, और बहुत बड़े दुनिया जिनको दुर्भाग्य बोलते हैं उन वो आपके लिए महासदभाग्य हो जाएगा। क्या होगा? आपका समय ही समय होगा, किस लिए? भगवत भजन के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। फिर आप लोग कंप्लेन कर लेके नहीं जाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है, अभी तो आपको चार माला दी जाएगी कि दो माला, वो भी कष्ट और वो भी बहुत 15-17 माले का बिल्डिंग चढ़ने के समान परिश्रम होगा दो माला में। लेकिन जैसे ट्रेंड हो जाएंगे और थोड़ा रस मिल गया और उस समय महाविपत्ति आता है ना सामने, महासंपद के रूप में, आभाती का अर्थ साक्षात विपत्ति, और एक दिन में एक जीवन में आपके घटना घटेगी कि मृत्यु जैसा महान भयानक वस्तु टल गया सामने से, उस दिन समझना चाहिए यह साधु कृपा कारण है, केवल साधु कृपा, फक्त साधु कृपा में वो ताकत है कि आपके मृत्यु को आए वो मृत्यु को दूर कर देंगे, वो दूर कर देगा, ये साधु संगति का प्रभाव। अगर आप भजन कर रहे हैं तो भजन करने के लिए भगवान किसी का मृत्यु को टाल दे कोई नई बात नहीं है उनके विषय में, और वो जो साक्षात मृत्यु है उनके सामने से हट जाए मृत्यु के रूप में कृष्ण, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो। आप जितना जितना आप भजन करेंगे उनके बाद आपको थोड़ा टेस्ट लगने से फिर पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा इस बात का कि आप क्या ले रहे हैं, और उस समय आपको पता चलेगा ओ हो क्या वस्तु आत्मा आ गई है। तो कहते हैं उन जो विपत्तियां है वो संपत्ति का रूप लेकर के आएगी, और कहते मृतिर अमृत तत्वाय, अरे बोले कहां तक कहे, वो मृत्यु जो है वो मृत्यु अमृतत्व का गेट खोलेगा, वो मरण मरण नहीं होकर के वैकुंठ गमन अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला वो मरण होगा। तब ये समझना चाहिए कि हमारे पास साधु संगति, मृत्यु भी जब अमृत होकर के आएगा क्या कहा जाए इस सत्संग का। तो आप लोग जो ये अद्भुत सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, वस्तु तो ये कोई छोटे मोटे भाग्य की बात नहीं है, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म का, करोड़ों करोड़ों पुण्य कार्यों का एक साथ में जब उदय होता है ना, तब भागवत मिलता है, ये समझिए, तब भागवत मिला है। बाकी छोटा मोटा दान पुण्य इत्यादि कर्म के द्वारा ये वस्तु नहीं मिलेगी। तो आप लोग धन्य भाग्य है, मैं मुझे भी मैं ये मानता हूं कि मैं भी बहुत बहुत भाग्यवान हूं कि इस संस्था मुझे मिली है, श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित इस संस्था में रहने का मुझे जो योग्यता मिला है, परमिशन मिली है, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद श्रील प्रभुपाद महाराज को देता हूं। और इस प्रकार आप लोग भी कहेंगे कुछ ही काल में, जब आप थोड़ा जप करेंगे और जप के बाद में फिर आप देखिए थोड़ा जप करके कि आपको एक बार चस्का लग जाए इसका, बस चस्का का बात है, जैसे चस्का लग गया उनके बाद में आपको मालूम पड़ेगा। तो आप लोग धन्य हैं, और कुल मिलाकर के हम सब लोग धन्य हैं, लाल गोविंद जी धन्य है कि श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे महान भक्त का हम लोग को संगति मिला है, अतः श्रीमद भागवतम जैसा महान ग्रंथ हमको मिल रहा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। आप लोग कथा सुन ही रहे थे, ख्याल से वही कथा चल रहा था, भागवत की सराहना चल रही थी ना जब मैं आया। तो वस्तुतः हम लोग धन्य है, तो उस धन्यता के और ज्यादा उस धन्य तो हो गए हैं, लेकिन कृतकृत्य अब लाल गोविंद प्रभु के मुख से कथा सुन करके हम लोग और ज्यादा कृतकृत्य का अर्थ होता है और ज्यादा धन्य। वो धन्य होंगे, मैं भी 15 मिनट उस धन्यवाद को प्राप्त करूंगा आपके साथ बैठ करके, जब तक मेरा ट्रेन का टाइम न हो, मैं भावनगर जा रहा हूँ, तो जब वो ट्रेन का टाइम ना हो जाए तब तक मैं भी अपने आप को वो धन्य करूंगा। तो श्री लाल गोविंद प्रभु को मैं विनंती करता हूँ आगे वो कथा को जारी रखें। हरे
कृष्ण। गिरीश गुड़ाकेश प्रभु की धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे
हरे, हरे। इस प्रकार जब महापुरुषों के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, भागवत प्रमाण है, जब कोई महापुरुष अपने मुख से शब्द निकालते हैं तो वह शब्द भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे हुए केसर से स्पर्श होकर निकलते हैं और डायरेक्ट हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। वह असर वह इफेक्ट डायरेक्ट हृदय पर होती है और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। परम सौभाग्य है। आइए हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय से। आइए सब लोग आगे बैठे, थोड़ा पीछे जगह नहीं है, सब लोग थोड़े थोड़े आगे हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
प्रसंग से आप सब अवगत हो, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जिनका नाम हरियश्व है, नारद मुनि हरियश्व को 10 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न था, आप लोग इस सृष्टि के अंत को जानते हो? तब हरियश्व ने समझा कि वास्तव में भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यत अनादि निज बंधनम, यह सृष्टि और कोई नहीं, यह भू जो है क्षेत्र है और शरीर ही एक क्षेत्र है, और यह शरीर का अंत, यह शरीर का डेस्टिनेशन प्लेस भगवान के धाम में होता है। जब तक भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है तब तक जीव को यह शरीर रूपी बंधन प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसे बंधन से मुक्त न होकर किम असत कर्म भीर भवेत, असत कर्म करने से क्या लाभ है? नारद मुनि के प्रथम प्रश्न को समझ गए। दूसरा प्रश्न पूछा था, तथैक पुरुषम राष्ट्रम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, राष्ट्र शब्द का अर्थ है चौदह भुवन से निर्मित यह ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और कल्प साबित किया, प्रमाणित किया कि संसार में एक एव ही ईश्वर, एक ही ईश्वर है और वो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे ही इस जगत का सर्जन करने वाले हैं, पालन और प्रलय करने वाले हैं, वे ही कंट्रोलर है, वे ही परम नियंता है, क्योंकि कृष्ण ही छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, कृष्ण ही पूर्ण है, इसलिए केवल मात्र कृष्ण ही संसार में एक पुरुष है और बाकी सब कृष्ण की शक्ति होने के नाते ये शक्ति जो है इसे स्त्री कहा गया है। प्रकृति भगवान की यह जीव शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं ये सब भगवान के अधीन है और पुरुष एकमात्र कृष्ण है। हरेश्वर समझ गए कि उस पुरुष को समझे बिना और उस पुरुष के लिए कर्म किए बिना किम असत कर्म भिर्भवेत, उस पुरुष के लिए यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो जीवन का क्या लाभ है। तब नारद मुनि ने तीसरा प्रश्न पूछा, बिलम च अदृष्ट निर्गमम, एक ऐसा बिल है, बिल का अर्थ होता है हॉल जिसमें चूहा रहता है, सर्प रहता है, उसे बिल कहा जाता है। बिलम च अदृष्ट निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जा तो सकता है परंतु पुनः वापस नहीं निकल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और एक ऐसा प्रश्न, एक आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि के प्रश्न जो कम बुद्धि रखते हैं वे तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, कम बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे, और यदि विचार किया जाए तो इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। हरियश्व तुरंत समझ गए कि एक ऐसा बिल जिसमें व्यक्ति जा सकता है, मनुष्य जा सकते हैं परंतु वापस नहीं आ सकते हैं। हरिश्व ने इस प्रश्न को इस प्रकार से समझा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुमान नैवेत्य यद गत्वा, 13वें श्लोक में कहते हैं, पुमान नैवेत्य यद गत्वा बिल स्वर्ग गतो यथा प्रत्यक धाम अविद इह किम असत कर्म भीर भवे। यथा जिस प्रकार बिल स्वर्ग गतो पुमान यद गत्वा न एव इति, हरियश्व समझ गए कि जिस प्रकार बिल स्वर्ग, बिल का अर्थ क्या समझे, अच्छा वो बिल क्या है, वो कौन सी जगह है जिसमें व्यक्ति जाता है परंतु वापस निकलने में बहुत कठिनाई होती है। तो भागवत के इस प्रश्न के ऊपर कई सारे आचार्यों ने विचार किए हैं। तो एक वीर राघव नाम के आचार्य कहते हैं कि वास्तव में यह बिल और कोई नहीं, यह बिल हमारा अपना हृदय है। कहते हैं कि यह जीव यह हृदय रूपी बिल में आकर फंस जाता है और जब जीव इस हृदय में आता है, जीव माने आत्मा, आत्मा का स्थान हृदय में है, आत्मा जब हृदय में आती है और हृदय में आकर जीव जब इस भौतिक संसार की माया में फंस जाता है, वह जीवात्मा उस माया के कारण, माया के प्रभाव से इस संसार के भोगों में इतना आविष्ट हो जाता है, इस संसार के भोगों में इतना फंस जाता है कि फिर वह उस हृदय बिल से कभी निकल नहीं पाता है। यद्यपि वह हृदय बिल उसकी रहने की वास्तविक जगह नहीं है। अपने कर्म के वश बिचारा हृदय बिल में आकर फंसा है, परंतु भजन न करके भोग करने के कारण, इस संसार के भोगों में आसक्त रहने के कारण वे लंबे समय तक इस हृदय रूपी बिल में रहता है। ये सत्य बात है भक्तों। हम सब लोग, ये और किसी की कथा नहीं है, हमारी अपनी कथा है। हम सब लोग इस हृदय नामक बिल में फंसे हैं। और इसके अगले से अगले उत्तर में हमने सुना कि यह शरीर ही यत अनादि निज बंधनम, यह शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है, यह शरीर ही सबसे बड़ा दुख देने वाला है। और हम इस शरीर रूपी इस हृदय में फंसे हुए हैं, और फंसने का कारण यही है इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, दृढ़ आसक्ति। और जितनी कड़ी आसक्ति, जितना ज्यादा आसक्त हम रहते हैं, उतना और इस बिल में फंसते जाते हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में सोम वंश की परंपरा गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी पुरुरवा महाराज की कथा कहते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा थे जिसमें सभी गुण था। एक समय की बात, वे अपने राज्य में बैठे थे और उसी समय स्वर्ग से सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उस राज्य में पधारी। राजा पुरुरवा बैठे थे, उर्वशी उनके सामने खड़ी रह गई और उस अप्सरा को देखकर राजा पुरुरवा मोहित हो गए। सबके सामने पूछ दिया, आप कौन हो, तुम इतनी सुंदर लग रही हो, कहां से आई हो, क्यों, क्या काम है तुम्हें? तब उर्वशी ने उत्तर दिया और राजा ने सबके सामने कह दिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उर्वशी ने तीन शर्त रखी कि मैं केवल घी का बना हुआ भोजन खाऊंगी और मेरे सामने तुम कभी निर्वस्त्र होकर मत आना, और मेरे पास दो भेड़ के बच्चे हैं, उसकी रक्षा तुम्हें करनी होगी। राजा ने सारी शर्त स्वीकार रखी। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री या किसी भोग में मोहित हो जाता है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। शर्त मंजूर की, पुरुरवा और उर्वशी एक साथ रहने लगे। बहुत समय तक उन्होंने भोग भोगे, परंतु भोगा न भोगता वैमेव भोगता। भोग भोगने से भोग भोगने की वासना कम नहीं होती है, वह कामना बढ़ती जाती है। कुछ समय के बाद उर्वशी का जाने का समय हो गया, क्योंकि उसे स्वर्ग में लौटना था। और यहां पर एक घटना घटी, वह भेड़ के बच्चे क्या पता गंधर्व आए लेकर चले गए। सुबह हुई, उर्वशी ने कहा, मेरे भेड़ के बच्चे राजा पुरुरवा पकड़ने के लिए गए और भेड़ के बच्चे की रक्षा नहीं करने के कारण, निर्वस्त्र उनके सामने आने के कारण, उर्वशी उसी समय राजा पुरुरवा को छोड़कर चली गई। यद्यपि राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, और उस उर्वशी के मुंह में राजा दर दर भटकने लगे, हा उर्वशी, हा उर्वशी। राजा को संसार का कोई भोजन अच्छा नहीं लगा, सोना घूमना फिरना सब हराम हो गया, और एकमात्र उर्वशी को प्राप्त करने की हृदय में कामना। और न जाने उर्वशी को प्राप्त करने के लिए राजा ने बहुत बहुत प्रयास किया। कहते हैं कि राजा उर्वशी के साथ ये घटना सतयुग की थी, और पूरे सतयुग के काल तक राजा पुरुरवा ने उर्वशी के साथ भोग किया था। त्रेता युग आ गया, और त्रेता युग आते ही राजा पुरुरवा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करके वे स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाकर उर्वशी के साथ रहने लगे, भोग भोगने लगे, हजारों हजारों वर्षों तक उर्वशी के साथ भोग भोगे, परंतु फिर भी वे कामना कम नहीं हुई। अंत में भगवान की कृपा से जब राजा को बुद्धि आई, तब राजा पुरुरवा उस स्वर्ग से यहां पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर उन्होंने एक गीत गाया। इला के पुत्र होने के कारण पुरुरवा का एक नाम एल था और उस एल राजा के द्वारा जो गीत हुआ उस गीत को एल गीत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दे रहे थे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से पुरुरवा के गाए हुए गीत को गाते हैं और उद्धव जी को उपदेश देते हैं। महाराज पुरुरवा ने हजारों हजारों जन्मों तक भोग किया और अपना अनुभव इस गीत में लिखते हैं कि देखो मैं कितना मूर्ख था, हाय रे दुर्भाग्य, मैं चक्रवर्ती सम्राट था, सर्वगुण संपन्न था, लेकिन फिर भी संसार की एक स्त्री ने मुझे इतना मोह लिया, इतना मोह लिया, न तो मुझे रात का पता चला, न दिन का पता चला, जीवन का लंबा समय उसी में बीत गया। और उन्होंने लिखा है कि मैं सोचता था कि संसार के भोग भोग लेने से भोगने की वासना कम हो जाती है। कुछ ऐसे धर्म संप्रदाय है जो इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि जो भी मन में इच्छा हो पूरी कर लो, और मन की इच्छा को पूरी कर लोगे तो वह इच्छा समाप्त हो जाएगी। मित्रों, मन की इच्छा पूर्ण करने से और भोग भोगने से वह वासना कम नहीं होती है, उल्टी बढ़ती है। जैसे कोई अग्नि जल रही हो, पुरुरवा महाराज दृष्टांत देते हैं, जलती हुई अग्नि में यदि हम घी डालेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए वह अग्नि बुझ जाए, परंतु कुछ मिनटों के बाद वह अग्नि 10 गुना बढ़ जाती है। वैसे भोग भोगने की इच्छा रखने वाले जब उसे पूर्ण करते हैं, भोग भोगते हैं, तो वह इच्छा 10 गुना बढ़ जाती है और वह और इस भोग के दलदल में फंसता जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। व्यक्ति सोचता है कि मैं भोग भोग रहा हूं। राजा भर्तहरि अपने नीति शतक में कहते हैं, भोगान भोगता वैमेव भोगता। अरे मैं मूर्ख सोच रहा था कि मैं भोग को भोग रहा हूं, परंतु वास्तव में भोगों ने मुझे भोग लिया। संसार के लोग कहते हैं मैं शराब पी रहा हूं, परंतु मूर्ख लोग नहीं जानते हैं शराब उसे पी रही है। संसार के लोग सोचते हैं कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, परंतु वास्तव में सिगरेट उस व्यक्ति को पी रही है। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, सत्य तत्व तो यह है कि भोग हमें भोग रहे हैं, और इस भोगों में फंसकर यह जीव, यह हृदय रूपी बिल में ऐसा फंस जाता है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिलम च अदृष्ट निर्गमम, नारद मुनि ने कहा एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जा तो सकता है परंतु वापस नहीं आ सकता। एक आचार्य कहते हैं कि हृदय रूपी बिल में जीव इस प्रकार से फंस जाता है और इतना आसक्त मोहित हो जाता है कि फिर अपने स्वरूप को नहीं जानता है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। परंतु फिर भी यदि वह व्यक्ति भगवान का भजन करे तो वह हृदय रूपी बिल से भी बाहर निकल सकता है। यह हृदय रूपी बिल ऐसा है, यदि कोई कितना भी बड़ा आसक्त हो परंतु भक्ति करने से वह इस बिल से बाहर निकल सकता है। इसलिए नारद मुनि ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर एग्जैक्टली यह नहीं है, क्योंकि यह हृदय रूपी बिल तो ऐसा है जिसमें व्यक्ति बाहर भी निकल सकता है, तो फिर और क्या हो सकता है। तो एक आचार्य कहते हैं कि यह बिल और कोई नहीं, यह बिल तो बिलम स्वर्ग पातालम गतः इव। कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पाताल में चला जाता है और उस पाताल से निकलना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही यह बिल में जाने वाला बहुत मुश्किल से निकल सकता है। पाताल का अर्थ क्या होता है? पाताल का अर्थ होता है पृथ्वी के नीचे के लोक, नारकीय लोग, नारकीय लोक अर्थात नरक लोक। वास्तव में नरक में यदि एक बार व्यक्ति चला जाता है तो उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नरक में यहां पर व्यक्ति एक पाप करता है तो नरक में उसे सैकड़ों गुना सजा मिलती है। ऐसा नहीं कि एक पाप किया तो नरक में बस एक सजा देकर वापस भेजो। सुखदेव गोस्वामी भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि परीक्षित, सहस्त्र सहस्त्र सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक उस अपराधी जीव को इस नरक में दंडित किया जाता है। आइए, नरक का नाम आया है तो कुछ इसका वर्णन भी हो जाए, क्योंकि जहां पर हमें जाना है उसे तो ध्यान से सुनना चाहिए है? हम कोई घर में रह रहे हैं और मानो घर शिफ्ट करना है, दूसरे घर में जाना है, तो उस घर के बारे में हम पता लगाते हैं कैसा है, कहाँ है, वहां कुछ फैसिलिटी है या नहीं है। तो वास्तव में ये जो नरक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 28 प्रकार के नरक, वैसे तो बहुत सारे हैं परंतु 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था, जीवस्य एतत् वैचित्र्यम कथम इति, संसार में इस जीव की विचित्र विचित्र अवस्था क्यों है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कर्म के कारण। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे ऐसी गति प्राप्त होती है। गीता में कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि कोई व्यक्ति सत्वगुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करता है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वे ऊपर के लोकों में जाता है। यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करता है तो इसी पृथ्वी में 84 के चक्कर में फंस जाता है। परंतु भगवान के नियम को तोड़कर, भगवान के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो ऐसा अपराधी जीव, ऐसा तमोगुणी जीव जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, नरक में जाते हैं और नरक में उसे बहुत दंडित किया जाता है। जब इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित कहते हैं नरका नाम भगवान, हे प्रभु ये नरक क्या है, आहोस्वित अंतरालम इति, क्या ये नरक इस ब्रह्मांड में है कि बाहर है। ऐ संसार के कुछ लोग कहते हैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं है, जो भी है यही है, चार दिन की चांदनी ऐश कर लो, बाद में कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा है, नरक के बारे में बताइए। तो तब कहते हैं ये नरक, जैसे ये संसार की गवर्नमेंट, भारत देश की गवर्नमेंट जब शहर का निर्माण करती है, शहर का निर्माण करने के साथ साथ कुछ नियम बनाती है, और यदि कोई नागरिक उस नियम को तोड़ता है तो यह गवर्नमेंट उसे जेल में बंद कर देती है। उसी प्रकार भगवान जब यह दुनिया बनाते हैं, यह संसार बनाते हैं, तो इस संसार में रहने के कुछ नियम बनाते हैं, और इस संसार में रहते हुए भगवान के नियम को यदि हम तोड़ते हैं तो निश्चित भगवान के द्वारा उस जीव को भगवान की बनाई गई जेल अर्थात नरक में डाला जाता है। भगवान की जेल का नाम नरक है, क्यों, क्योंकि इस जेल में केवल नर ही जाते हैं, नरक माने मनुष्य जीवन के बाद ही नरक मिलता है, नर जाते हैं इसमें और बहुत भयावह भयावह सजा होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो लोग मांसाहार करते हैं, मांस को खाते हैं, अंडे खाते हैं, अखाद्य वस्तु खाते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नामक नरक में डाला जाता है, और उस नरक में उस जीव को बहुत पीटा जाता है, दंडित किया जाता है। यमराज के द्वारा, नरक के देवता यमराज जी है, और यह नरक पृथ्वी के बिल्कुल नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिणी छोर में ये नरक का स्थान है जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, छोटा नहीं है। और मांस अखाद्य वस्तु खाने वाले को कुंभिपाक नाम के नरक में, कहते इस नरक में बहुत बड़ी कड़ाई होती है। कड़ाई जानते हैं? बहुत बड़ी कड़ाई होती है, उसमें कई लीटर तेल होता है, ऑयल, और उसे बहुत हीट करके, गर्म करके उबाला जाता है। और जिस व्यक्ति ने इस संसार में जिस प्रकार से मांस खाया है, मांस को फ्राई किया है, केवल मांस ही नहीं, अखाद्य वस्तु में है जो चीज खाने वाली नहीं है, भगवान ने जिस चीज को खाने के लिए मना किया है, ऐसी चीज जो खाते हैं, अर्थात मांस, मच्छी, अंडे, प्याज, लहसुन, जिस प्रकार से इन वस्तु का तेल में तड़का मारते हैं, कुछ लोग डबल तड़का मारते हैं, जिस प्रकार तेल में इस वस्तु का फ्राई करते हैं, उसी प्रकार नरक में इस जीव को उस गरम गरम कड़ाई में फ्राई करते हैं। व्यक्ति चिल्लाता है, छोड़ दो छोड़ दो, मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, पछतावा होता है, परंतु मन पछताए है, अवसर बीते, अवसर बीत जाने के बाद यदि मन पछताए फिर भी कोई फायदा नहीं है। यमदूत डंडे मारते हुए कहते हैं, मनुष्य जीवन मिला था, इतनी सुंदर बुद्धि मिली थी, इस्कॉन के भक्त भी आए थे समझाने के लिए, फिर भी खाया, 3 डंडे और मारते हैं। बहुत पीटते हैं और गरम गरम उबलते हुए तेल में उसे डाला जाता है, खून पस निकल जाता है। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है, तो क्या व्यक्ति मर नहीं जाता है? कहते हैं नरक में इस जीव को विशेष शरीर दिया जाता है, जिस शरीर का नाम है यातना शरीर। यह शरीर पंच महाभूत से बना है, इसे थोड़ा ज्यादा कष्ट हो तो यह मर जाता है, छूट जाता है। परंतु नरक में जो शरीर दिया जाता है वो विशेष शरीर होता है, स्पेशल दुख देने के लिए यह शरीर होता है। ये शरीर कट जाए फिर भी वो मरता नहीं है, दुख बहुत होता है। तो इस प्रकार से वह मूर्छित हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है, बाहर कुछ समय के लिए रख देते हैं, कुछ देर के बाद जैसे ही मूर्छित अवस्था से बाहर आता है, फिर से उस तेल में डालते हैं। हमारे जीवन में हमने जितनी बार मांस मच्छी मटन इत्यादि खाए हैं, प्याज लहसुन को फ्राई किया है, उससे हजारों गुना ज्यादा वहां पर हमको फ्राई किया जाएगा। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक पाप की सजा सैकड़ों बार दी जाती है, कुंभिपाक नरक। दूसरा नरक है आईपानह नामक नरक। इस नरक में जो लोग बहुत शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, ऐसे लोगों को आईपानह नामक नरक में डाला जाता है। इस नरक में बहुत भयावह सजा होती है। 5-5 यमदूत एक एक जीव को पकड़ते हैं। एक यमदूत उस जीव का पांव पकड़ता है, दूसरा हाथ पकड़ता है, तीसरा अपने दोनों हाथ से उसके मुंह को फाड़ता है, और चौथा गरम गरम लोहे और शीशे के रस को, लोहे को जब बहुत गरम किया जाता है तो हायर टेम्परेचर के ऊपर लोहे को जब गर्म करते हैं तब वह लिक्विड हो जाता है। ऐसे गरम गरम लोहे के रस को एक यमदूत लेकर आते हैं, और उसने अपने जीवन में जितना लीटर शराब पी है, जितना लीटर मावा का रस खाया है, पिया है, जितना लीटर गुटखा का रस, चाय का रस लिया है, into 1000, एक बार दे तो ठीक है, परंतु हजारों गुना सजा उस गरम गरम लोहे का रस उस जीव के मुख में डाला जाता है। चिल्लाने लगता है, कांप जाता है, मूर्छित हो जाता है, परंतु यमदूत छोड़ते नहीं है। और देखिए, यहां के कुछ पुलिस वाले होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत धन और लांच दे दो तो छोड़ देते हैं, परंतु वहां पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हाँ, तो यमराज जी के द्वारा इतने ट्रेन होते हैं, उसे किसी भी प्रकार की दया नहीं होती है। इस प्रकार से आईपानह नामक नरक, जो लोग परस्त्री संग करते हैं, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ संग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तप्त सुरमी नामक नरक में डाला जाता है। इस नरक में जिस व्यक्ति ने जैसी स्त्री के साथ, जिस स्त्री ने जैसे पुरुष के साथ संग किया था, ऐसे ही लोहे के पुरुष और लोहे की स्त्री को बनाया जाता है, और उस लोहे की स्त्री को गर्म किया जाता है। लोहा जब गर्म होता है तो लाल लाल हो जाता है, तब उस जीव को जबरदस्ती दो यमदूत हाथ पकड़ते हैं, दो पांव पकड़ते हैं, और जिस प्रकार उसने परस्त्री संग किया था, उस प्रकार जबरदस्ती उस गरम गरम लोहे के साथ संग कराते हैं। चिल्लाता है, रेंगता है, छोड़ दो, अब नहीं करूंगा, परंतु वहां कोई किसी भी जात का कंसीडर नहीं होता है, और हजारों हजारों वर्षों तक इस नरक में उस जीव को रखा जाता है, जल्दी से छूट नहीं पाता। और जो लोग जुआ खेलते हैं, दूसरे के धन को हड़पते हैं, ऐसे लोगों को संदश नाम के नरक में डाला जाता है, जिस नरक में यमदूत अपने कठोर हृदय से उस जीव के एक एक करके सभी चमड़ी के स्तर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इस नारकीय लोक में, नरक लोक में बहुत दुख और दर्द दिया जाता है। वास्तव में इस नरक से यदि हम बचना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चार नियम का सदैव पालन करना चाहिए। नरक में जाने से यदि बचना चाहते हो, मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री संग कभी नहीं करना चाहिए, और अखाद्य वस्तु नशा कभी नहीं करना चाहिए। यदि यह नहीं करेंगे तो हम नरक में जाने से बच सकते हैं, नहीं तो इस नारकीय लोक में हजारों हजारों वर्षों तक रखा जाता है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बीलम च अदृष्ट निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जाता है परंतु वापस नहीं आ सकता है। तो यदि उस बिल को हम नरक समझे कि इस नरक में व्यक्ति जाता है और बहुत बहुत वर्षों तक सजा भोगता है, परंतु बहुत बहुत सालों के बाद वह व्यक्ति बाहर अवश्य आता है, इसलिए नारद मुनि का जो बिल है वह नरक भी नहीं है, तो अब क्या हो सकता है? तो इस श्लोक में ही लिखा है, बिल स्वर्गम गतो यथा। यदि हम इस बिल को स्वर्ग समझे तो, बिल स्वर्गम, स्वर्ग का अर्थ आप जानते होंगे, जो लोग पुण्य करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, वस्त्र देते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, इस प्रकार से पुण्य करने वाले लोग अपने पुण्य के बलबूते के ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में विशाल मात्रा में भोग होता है। कहते हैं तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, वे स्वर्ग लोग विशाल है। विशाल का अर्थ होता है मात्रा की दृष्टि में विशाल, बहुत बड़ा लोक है, और उस स्वर्ग में सुख भी बहुत विशाल है, भोग भी बहुत विशाल है, भोजन इत्यादि सब कुछ विशाल है, सुख विशाल है, और उम्र भी बहुत लंबी होती है। जो व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है वो लंबे समय तक उस स्वर्ग में रहता है। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, उम्र विशाल है, भोग और सुख विशाल है, परंतु दुख की बात यह है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि उस स्वर्ग में रहने वाले जीव भी जब उसके पुण्य का अकाउंट समाप्त हो जाता है, संसार में उन्होंने जो पुण्य किया है वो पुण्य जब क्षीण हो जाता है तब उसे स्वर्ग से भी यहां पृथ्वी में आना पड़ता है। तो बताइए स्वर्ग में जाने से क्या लाभ? कुछ लोग बहुत पुण्य करते हैं, पुण्य करके स्वर्ग में जाते हैं परंतु फिर भी वहां से उसे वापस आना ही पड़ता है। यदि हम इस बिल को स्वर्ग समझे तो स्वर्ग में व्यक्ति बहुत काल तक रहता है परंतु वहां से भी वापस आ जाता है। इसलिए बिल स्वर्गम, इसलिए नारद मुनि का जो ये बिल है स्वर्ग भी नहीं है। तो अब क्या हो सकता है? एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जाता है परंतु वापस नहीं आ सकता। विजय ध्वज नाम के आचार्य कहते हैं बिल गत्वा ब्रह्म रूपम गत्वा। वास्तव में यह बिल और कोई नहीं, यह बिल जो है ब्रह्म ज्योति है। यह बिल और कुछ नहीं, यह बिल ब्रह्म ज्योति है। कुछ ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान करके उनकी इच्छा होती है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म में लीन होने के लिए वे लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बहुत मेहनत के बाद वे ब्रह्म में लीन होते हैं। परंतु वास्तव में ब्रह्म में लीन होना ये तो सबसे बड़ा दुख है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्धि अवाप्यते। वास्तव में ब्रह्म में लीन होना, कुछ लोग बहुत इस संसार में प्रायः कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं और अपने को भी उस ज्योति में मिलाना चाहते हैं। वास्तव में ब्रह्म में लीन होने वाले अपने अस्तित्व को नष्ट कर रहे हैं और अपने अस्तित्व को नष्ट करना ये तो सबसे बड़ा दुख है। तो कुछ लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और ब्रह्म में लीन हो भी जाते हैं परंतु वे भी बहुत बहुत समय के बाद, भगवान जब सृष्टि करते हैं तो भगवान के द्वारा वे भगवान से बाहर प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि का जो बिल है यह ब्रह्म गत्वा भी नहीं है। तो अब नारद मुनि जिस बिल की बात कर रहे हैं, जिस जगह की बात कर रहे हैं जहां से व्यक्ति वापस नहीं आता है, वह जगह क्या है? तो इसका वास्तविक उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरियश्व जिस प्रकार से समझे हैं वे उत्तर बताते हुए कहते हैं बिल गत्वा भगवत धाम वैकुंठ गत्वा। वास्तव में ये जो बिल है, नारद मुनि ने जो कहा है कि एक ऐसा बिल जिसमें व्यक्ति जाता है तो वापस नहीं आता है, वह बिल और कोई नहीं, वह बिल भगवान का धाम वैकुंठ है। भगवान का धाम एक ऐसा धाम है जहां पर व्यक्ति जाता है फिर वापस नहीं आता है। और भगवान श्री कृष्ण के धाम के अलावा और जितनी भी वस्तु है, चाहे स्वर्ग हो नरक हो, चाहे ब्रह्म में लीन भी क्यों न हो जाए, व्यक्ति यह सभी जगह से वापस आता है परंतु भगवान के धाम में गया हुआ जीव कभी संसार में वापस नहीं आता है, कभी नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वापस नहीं आएंगे तो अब सुखी कैसे होंगे? कुछ लोग भगवान के धाम में भी जाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं वहां क्या होगा, उससे तो अच्छा है यहां पर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमना, फिल्म देखना। मित्रों, भगवान के धाम के बारे में हमने कभी सुना नहीं है इसलिए हम वहां जाने की कभी इच्छा ही नहीं करते। हमने तो जो देखा है जो सुना है उसको ही हम बेटर मानते हैं, अच्छा मानते हैं। वास्तव में भगवान का नाम, पहले तो उनका गुण ये है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता है, क्योंकि यदि वापस आए तो फिर से माता के गर्भ में और जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक काम क्रोध लोभ पहले दिन याद कीजिए, वो बंधन वो दुख। वास्तव में यह संसार यह जगत ही दुख का कारण है, और जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक वास्तव में हम सुखी कभी नहीं हो सकते। तो यहां पर फाइनल उत्तर आ गया कि भगवान श्री कृष्ण का धाम एक ऐसा धाम है जहां जाकर कभी वापस नहीं आता। गीता में एक नहीं चार चार बार भगवान कहते हैं, आठवें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे उस धाम को प्राप्त कर लेता है न निवर्तन्ते, वह कभी वापस नहीं आता है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, अर्थात वे वहां से कभी वापस नहीं आता है। 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहते हैं, तत्पदम तत्परिमात्रिम तव्यम यस्मिन गतान निवर्तन्त भूय। जो व्यक्ति उस धाम में जाता है, मेरे धाम में आता है, वह जीव कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि मेरा धाम अद्भुत स्वभाव वाला है। कैसा है भगवान का धाम? कहते न तद भास यते सूर्य। भगवान के धाम की विशेषता क्या है? भगवान के धाम की विशेषता है कि भगवान के धाम में न तो सूर्य की आवश्यकता है, न शशांक न पावक, न तो भगवान के धाम में चंद्र की आवश्यकता है, न तो भगवान के धाम में अग्नि की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, एक ऐसा बिल है, ऐसी जगह है, इतनी सुंदर जगह है जो स्वयं प्रकाशित, वहां अग्नि की जरूरत नहीं, सूर्य की जरूरत नहीं, ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशित। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं लौटता है, ऐसा अद्भुत धाम है। और इसकी महिमा क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के धाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, श्रीय कांता कांत गमन अपि। कहते हैं भगवान के धाम में श्रीय लक्ष्मी के समान उनकी गोपिया ही प्रिया है, और कांत परम पुरुष, और भगवान ही परम प्रेमी है। भगवान के धाम में क्या है? भगवान और उनके भक्तों के बीच में प्रेम का स्वभाव है, और आपस में प्रेम का आदान प्रदान होते रहता है। वहां कोई क्लेश नहीं है, क्रोध काम इत्यादि कुछ नहीं है, वहां केवल प्रेम का आदान प्रदान है। और क्या है? कहते द्रुमा कल्प तरव। भगवान के धाम में द्रुम माने वृक्ष, और द्रुमा माने बहुत सारे वृक्ष हैं। कौन से? तो कहते हैं कल्प तरवह, अर्थात कल्प वृक्ष है। भगवान के धाम में कल्प वृक्ष का वास है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जिस वृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप जो भी कल्पना करते हो वह कल्पना की हुई वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। ऐसे सैकड़ों कल्प वृक्ष भगवान के धाम में है। भूमि, तो प्रश्न होता है वहां भूमि कैसी है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भूमि चिंता मणि गणमयी। वहां की भूमि के ऊपर कंकर और पत्थर नहीं है, या सीमेंट और कॉन्क्रीट नहीं है। भगवान के धाम की भूमि चिंतामणि, बहुत सुंदर चिंतामणि उनकी भूमि में लगे हुए हैं। चिंतामणि अर्थात वहां किसी भी किसान को हल जोतने की जरूरत नहीं है, यहां तो बेचारे किसान मर जाते हैं, और उसमें भी बारिश नहीं हुई तो कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। वहां की भूमि चिंतामणि अर्थात यदि भूमि के सामने कह दो इतना टन चावल चाहिए तो प्रकट हो जाता है, मेहनत की आवश्यकता नहीं। और देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वहां कोई ऑफिस भी नहीं है, सब कुछ चिंतामणि प्रकर सद मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभी रवि पाल यंतम, सब चिंतामणि चिंतन मात्र से उपस्थित। कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, न तो वहां कोई स्कूल है न कॉलेज है न पढ़ने लिखने की झंझट, और माताओं के लिए न तो भोजन बनाने की झंझट, चिंतन मात्र से सब प्रकट हो जाता है। आपको जो भी खाना है, पाव भाजी खाना है, केवल चिंतन करो, बोलना भी नहीं है। यहां तो बेचारे पतिदेव 10 बार बोलते हैं फिर भी नहीं बनती है। चिंतन करो, मन में विचार चिंतन होते ही प्रकट हो जाता है। चिंतामणि धाम है भगवान का, भूमि चिंतामणि है। और वहां का पानी कैसा है, है? हम कभी भी यहां से गांव में या कहीं जाते हैं तो पूछते हैं ना पानी कैसा है वहां पर, तो कुछ लोग पूछते हैं कि वहां पानी कैसा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं तोयम, तोयम का अर्थ है पानी, तोयम अमृतम, देखो लिखा है वहां पर तोयम अमृतम, वहां का पानी अमृत ही अमृत है, वहां बिस्लेरी भी नहीं है, बिस्लेरी तो बहुत दूर की वस्तु है, वहां अमृत है। अमृत माने जिसे पीकर व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है, बिल्कुल फ्रेश पानी अमृत है। आज तो यहां कितना भी भूमि खोद दो, कितना भी ड्रिल करो, परंतु फिर भी पानी ठीक से नहीं मिलता है। वहां तो अमृत की नदी बहती रहती है, अमृत की नदी की धारा, बहुत सुंदर पक्षी के कलरव होते हैं, बहुत सुंदर वातावरण होता है। यहाँ तो हमें मशीन में से बुलाना पड़ता है, वहां सब नेचुरल होता है। देखिए एक मशीन की आवाज में भी कितना आनंद आता है, जब नेचुरल भगवान के धाम में यह हो तो अद्भुत आनंद। शुरू रखिए थोड़ी देर, क्योंकि यहां तो धूल और धुएं और साइलेंसर की आवाज सुन सुनकर थक गए हैं। बंबई जैसे शहर में शुद्ध हवा है और शुद्ध पक्षियों के कलरव है। अच्छा वहां पर लोग चलते कैसे हैं? नहीं वहां पर कुछ फिल्म के गाने वाने हैं कि नहीं? कुछ लोगों को उसमें आनंद आता है, गाने वाने सुनने मिलेंगे, सीडी बीडी MP3 सीडी मिलेगी वहां पर, सीडी प्लेयर होगा, कहते हैं हाँ कथा गानम, वहां पर 24 घंटा गान शुरू ही होता है, जिसको इच्छा है बैठ जाए और कोई काम नहीं है वहां पर। यहाँ तो दिन में 1-1.5 घंटा कैसे भी करके निकाल कर यहां बैठते हैं, वहां कोई झंझट नहीं। कथा गानम, ये कथा रूपी गान 24 घंटा चलता रहता है। अच्छा तो वहां लोग चलते कैसे हैं? चलने में भी बहुत स्टाइल होती है, कुछ लोग हाथी की तरह चलते हैं, कुछ लोग बिल्ली की तरह चलते हैं। कैसे चलते हैं? कहते हैं नाट्यम गमन अपी, वहां सब लोग नृत्य करते हुए चलते हैं, नाचते हुए चलते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, चलते हुए तो बिल्कुल बिंदास नाचते हुए झूमते हुए चलते हैं। और यहां तो व्यक्ति के ऊपर इतना बोझ होता है, इतना टेंशन होता है, ठीक से चल भी नहीं पाता है। नाट्यम गमन अपी, वहां का चलना भी बिल्कुल अद्भुत है, नाचते हुए व्यक्ति चलते हैं। वंशी प्रिय सखी, और वहां और सब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहां एक वंशी काफी है, भगवान की बांसुरी काफी है। जैसे ही भगवान की बांसुरी बजती है सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सुरदास जी गाते हैं बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। समय नहीं है हमारे पास। बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। जब भगवान श्री कृष्ण उनके धाम में बांसुरी बजाते हैं तो वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। बड़े बड़े ब्रह्मचारी बड़े बड़े साधक वेद पढ़ना भूल जाते हैं, शिव जी की समाधि टूट जाती है। बांसुरी का असर तीनों लोक में होता है। भगवान की बंसुरी, बंसुरी बैकग्राउंड म्यूजिक में बजती रहती है। और वहां चिदानंदम ज्योति कहते, वहां सूर्य चंद्र की और स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता नहीं है। वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं है। ये तमस तमोगुण तो यहां होता है, वहां किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं। तो कुछ लोग प्रश्न करेंगे तो सोते कब होंगे? अरे बाप रे बाप, तो हम नहीं जानना चाहते हैं, सोने ही नहीं मिलेगा क्योंकि अंधेरे में सोने का आनंद आता है। तो वहां कभी कोई सोता ही नहीं है क्योंकि वहां कभी नींद ही नहीं आती है। नींद तो हमारे जैसे मांदे थके हुए लोगों को आती है। वहां तो ऐसा शरीर मिलता है किसी भी प्रकार का नींद नहीं, सोना नहीं है क्योंकि इतना सुख है, इतना सुख है, सोने का मन ही नहीं होता है। और परम अपि तत् आस्वाद्यम अपि च, और वहां की सभी वस्तु सुख देने वाली होती है। हमारी इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, एक वस्तु सुख देती है तो बाकी की 100 वस्तु दुख देती है, परंतु वहां सभी वस्तु सब चीज सुख देने वाली होती है। सयत्र शिराब्दि स्रवती सुरभिभ्यश्च सुमहान कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसरी बजाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर गाय होती हैं, और वह जो गैया होती हैं उनका नाम होता है सुरभि, सुरभि रविपाल यंत्र। भगवान की बंसरी से वह सुरभि नामक गाय, वह बंसरी सुनते ही अपने थन से इतना दूध छोड़ती है, इतना दूध छोड़ती है कि वह दूध का समुद्र बन जाता है। और यहां तो गाय बिचारी दूध दे ही नहीं पाते हैं क्योंकि गाय को खाने के लिए कोई चारा ही नहीं है। चारा जो है मनुष्य खाने लगे हैं, बिचारी गाय के लिए चारा भी कम हो गया। लेकिन वहां तो बहुत सुंदर भगवान की बंसरी से सुरभि गाय इतना दूध देती है, वहां के जो जमीन है वे दूध से उनका सिंचन करती है। इतना अद्भुत वातावरण होता है। निमेश अर्धाख्य वा व्रजती नहीं यत्रापि समय। तब कुछ लोग पूछेंगे तो कितने साल के लिए वहां तक रहने मिलेगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं निमेश अर्धो अपि। निमेश का अर्थ जानते हैं? सेकेंड से भी कम हिस्सा। ये जो हमारी आंख है, आंख की पलक मारने में जितना समय होता है कहते उतने समय से आधा समय का काल भी वहां व्यतीत नहीं होता है। जैसे मैं बोला तो उसमें 1 सेकेंड 5 सेकेंड निकल गई, परंतु वहां निमिष का आधा समय भी व्यतीत नहीं होता है। ये उपमा अलंकार है, इसका अर्थ है कि वहां काल है ही नहीं, वहां घड़ी है ही नहीं, वहां कोई काल नहीं। ऐसा नहीं कि 100 साल बीता या 200 बीता, वहां काल नामक वस्तु ही नहीं है। अर्थात वहां सब नित्य है, नित्य। इसलिए कहते हैं ओम नित्य लीला प्रविष्ट। ये सब लीला नित्य चलते रहता है, इसका कभी एंड नहीं होता है। और यम इह तो प्रश्न होता है तो इस जगह का नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं यम इह गोलोकम इति, इस जगह का नाम है गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
वास्तव में भगवान का धाम इतना अद्भुत है, जो मोदन मुक्ति के मंदिर में वो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। एक भक्त तो कहते हैं कि जो आनंद मुक्ति के मंदिर में भी नहीं, वो आनंद भगवान के धाम में है। सायुज सामीप्य सालोक्य साष्टी, ये पांच प्रकार की मुक्ति में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद भगवान के इस धाम में। इसलिए रस खान, हमारे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण के केवल हिंदू ही नहीं, बड़े बड़े मुसलमान भी भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। और रस खान जिसका नाम है, ये तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गो कुल गाव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु मरने के बाद यदि आपको मुझे मनुष्य का जन्म देना हो, आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं कि मुझे गोलोक वृंदावन में जन्म देना। परंतु हृदय में जब यह भावना उठी, भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी ऐसा काम नहीं है कि मुझे आपका धाम प्राप्त हो सके, मुझे मनुष्य का जन्म मिल सके। इसलिए कहते हैं कि मैं तो मनुष्य नहीं बनूंगा, निश्चित मैं पशु बनूंगा। और प्रभु यदि आपको मुझे पशु बनाना हो, तो वे कहते हैं जो पशु हो तो कहां बस मेरो, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरावत नंद की धेनु मंजारन। रसखान जी कहते हैं कि प्रभु यदि मरने के बाद मनुष्य न बनू कोई बात नहीं, यदि मुझे पशु भी बनाना हो तो नंद बाबा के 900,000 गाय के बीच में एक छोटी गाय बना देना, ताकि गाय बनकर भी कृष्ण को देखता रहूंगा। फिर भी हृदय में इतनी नम्रता, वे सोचने लगे अरे मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं पशु भी नहीं बनूंगा। अंत में भगवान से कहते हैं कि यदि पत्थर भी बनाना हो,
पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को जो।
कहते पत्थर बनाना हो तो वह गिरिराज गोवर्धन की तलेटी का एक छोटा सा पत्थर बना देना, ताकि कृष्ण वहां पर गाय चराने के लिए आएंगे और मैं उसका नित्य निरंतर दर्शन करता रहूंगा। और अंत में कहते हैं कि यदि गिरिराज गोवर्धन का पत्थर भी न बना सको, तो एक छोटा सा पक्षी बना देना,
जो खग हो तो वही गिरी को जो, जो खग हो तो कहां बस मेरो, कालिंदी कदंब की द्वारन।
हे प्रभु, जो मुझे खग बनाना हो, यदि मुझे पक्षी बनाना हो, तो एक यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा पक्षी बना देना, ताकि कृष्ण यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे और मैं उसका दर्शन करूंगा। लेकिन आपके चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूं, जन्म देना हो तो गोलोक वृंदावन में देना। क्योंकि गोलोक वृंदावन भगवान का अपना धाम है, भगवान की अपनी जगह है। कहते हैं वृंदावनम परितज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर, गोलोक को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का अपना घर है, ये गोलोक जो है भगवान का घर है। अब देखिए, अब एक बुद्धिमानी की हम बात आपको सुनाने जा रहे हैं। कि एक बात तो हमें पता चल गया, नारद मुनि ने कहा है कि एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जाता है परंतु बाहर नहीं आ सकता है, और वह बिल कौन है, क्या है? कहते हैं भगवान का धाम। और वह कहां है? कहते हैं यह भौतिक जगत, हम जिस जगत में रहते हैं यह भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, और इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में विरजा नदी है, और आध्यात्मिक जगत में सबसे टॉप मोस्ट ये गोलोक धाम स्थित है, और भगवान भगवत गीता में इसे अक्षर धाम कहते हैं। कि अक्षर जो है ये भगवान के धाम का नाम नहीं है, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं भगवान के धाम का नाम अक्षर धाम है। गीता में भगवान इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कब, जब उनके धाम का गुण बताते हैं, तब कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा मेरे धाम का कभी क्षर नहीं होता है, नाश नहीं होता है, इसलिए मेरे धाम का एक गुण है और वह गुण है अक्षर। ये अक्षर जो है गुण है, नाम नहीं है। भगवान के धाम का नाम गोलोक या वृंदावन है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का धाम इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत में है, और कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो उसमें चला जाता है वे कभी वापस नहीं आता है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मन सष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। कहते हैं मम एव अंश जीव, ये हम सब जीव हैं, हम सब आत्मा है, हम सब जीव भगवान का अंश है। देखिए बुद्धि से सुनिए, भगवान परमात्मा है और हम सब उनकी आत्मा है, क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। और कृष्ण ही कहते हैं मम एव अंश, ये संसार में जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। तो हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। अब देखिए भगवान कहां पर रहते हैं, कहां रहते हैं, क्या कहा मैंने अभी, वृंदावनम परितज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, परमात्मा गोलोक धाम में रहते हैं, तो परमात्मा का अंश भी गोलोक धाम का ही होना चाहिए। परमात्मा यदि भगवान यदि गोलोक धाम में रहते हैं तो उनका अंश होने के नाते यह जीव का वास्तविक घर गोलोक धाम है। परंतु दुख की बात यह है कि यह जीव अपना वास्तविक घर को छोड़कर यह नकली घर में आकर बैठ गया है, और वास्तव में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए बहुत बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं, परंतु बहुत परिश्रम करने के बाद भी सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संसार के लोग जानते ही नहीं है कि वास्तविक दुख क्या है। हमारे लिए वास्तविक दुख यह है कि हम हमारा असली घर छोड़कर नकली घर में आकर बैठे हैं, जो वास्तव में हमारा है ही नहीं। और जब तक यह जीव अपने असली घर में नहीं जाता है तब तक वे दुखी ही होता रहता है। कौन सा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा कृष्णा
राम राम राम।
तो हम दो चीज को छोड़ दिए हैं इसलिए हम दुखी हैं, एक तो हम हमारे पिता को छोड़कर और एक हमारे वास्तविक घर को छोड़कर यहां पर आए हैं। और इस संसार में हम तब तक दुखी होते रहेंगे जब तक हमारा पिता हमें न मिल जाए और हमारा वास्तविक घर हमें प्राप्त न हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, परंतु करोड़ों अरबों रुपए जिसके पास है वह भी सुखी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं सुंदरता मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, बड़े से बड़े सुंदर भी सुखी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं गाड़ी बंगले मिल जाएंगे सुखी हो जाएंगे, ये सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वास्तविक सुख यहीं यहां पर है ही नहीं। हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हमारे पिता के पास और हमारे वास्तविक घर में हम जाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। एक बार एक धनी पिता जिसके पास बहुत धन था अपने छोटे से बच्चे को लेकर मेले में गए। मेला जानते हैं, मेला लगता है जिसमें बहुत लोग होते हैं और अक्सर लोग मेले में खो जाते हैं। तो ये पिता अपने पुत्र को लेकर मेले में गए और पुत्र ने अपनी पिता की उंगली पकड़कर रखी थी। मेले में बहुत घूमे घूमे परंतु क्या पता अचानक पुत्र के हाथ से पिता की उंगली छूट गई। पिता पुत्र को ढूंढे, पुत्र पिता को ढूंढे, परंतु इतनी भीड़ होने के कारण पिता को न तो पुत्र मिला न तो पुत्र को पिता मिला। पिता दुखी होकर अपने घर पर चले गए। सभी अखबार में पुलिस वालों को बता दिए मेरा पुत्र खो गया है, यदि मिले तो मुझे वापस लौटाना। और यहां पर पुत्र मेले में सब लोग अपने अपने घर चले गए और उस मेले से बाहर निकला। और जिस समय से उसने अपने पिता की उंगली छोड़ दी उस समय से पुत्र का रोना शुरू हो गया। तो छोटा सा बालक रो रहा था, रास्ते से जा रहा था। एक व्यक्ति ने सोचा कि बेचारा भूखा लगता है, भूखा है इसलिए रो रहा है, तो उस बालक को 2-3 वड़ा पाव लाकर दे दिए। लेकिन फिर भी वो बालक रोता रहा। आगे चला तो एक व्यक्ति ने सोचा कि लगता है इस बालक के पास पैसे नहीं है, पैसे दे दूंगा तो रोना बंद हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। उसने 2-3 हजार रुपये दे दिए लेकिन फिर भी वो रोता रहा। आगे चला तो एक व्यक्ति ने देखा कि ठंडी की ऋतु है, बेचारे को ठंडी लग रही है इसलिए कंबल दे दिया, लेकिन कंबल लेने के बाद भी वो रोता रहा, रोना उसका बंद नहीं हुआ। परंतु चौथा व्यक्ति मिला, देखा कि ये रो रहा है और शक्ल से तो कोई धनी व्यक्ति का पुत्र लगता है। तो चौथे व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं दिया, उसका हाथ पकड़कर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में लेकर गया और पुलिस वाले को कहा कि देखो ये रास्ते में घूमता हुआ रो रहा है, किसका है यह? तो पुलिस वाले तो उसी को ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप इसको यहां पर लेकर आ गए, हम लोग इसी को ढूंढ रहे थे, इसके पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उसके पास बहुत धन है। तुरंत उसके पिताजी को बुलाए, पिताजी मर्सिडीज बेंज में आए, उतरे और कहा ये तो मेरा लड़का, और पिताजी पिताजी करके उसके गोद में चला गया, गाड़ी में बैठकर चला गया। जैसे ही पिताजी उसे मिले और उसके घर पर पहुंचा, रोना बंद। कहानी बहुत छोटी है परंतु उपदेश बहुत बड़ा है। वास्तव में वह बालक और कोई नहीं, हम ही है, और पिताजी और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। जैसे यह जीव, जैसे वह बालक अपने पिता से अलग हुआ तो रोने लगा, वैसे ही यह जीव जैसे ही भगवान से अलग होता है, कृष्णेर बहिर्मुख, भगवान से जैसे ही यह बहिर्मुख होता है, यह जीव दुविधा में, दुख में फंस जाता है। और फिर इस संसार में उसे कितना भी धन मिले, भोजन मिले, खाने पीने रहने के लिए वस्तु मिले, जब तक उसे उसके वास्तविक पिता और उसका वास्तविक घर नहीं मिल जाता है तब तक वह सुखी नहीं हो पाता है। मित्रों, वास्तविक दुख का कारण यह संसार है और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस दुख रूपी संसार में सुखी होना चाहते हैं। अब यह कैसे हो सकता है? एक बार एक जेल में कई सारे कैदी उम्र कैद की सजा भोगत रहे थे, परंतु प्राइम मिनिस्टर को क्या सूझी, कहा कि देखो इस कैद जेल में उम्र कैद की सजा भोगत रहे हैं और मेरी इच्छा है कि आज ये सभी कैदियों की इच्छा को पूरी करूंगा, जो भी इच्छा हो। तो सेंट्रल जेल में बहुत बड़ा बैनर लगाया गया, स्टेज बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर आए और सभी कैदियों को लाइन में खड़ा रखा गया और अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आज सभी कैदियों की इच्छा पूर्ण होगी। एक के बाद एक कैदी आते गए। पहला कैदी आया, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो पहले कैदी ने कहा कि देखो इतने सालों से खिचड़ी खा खा कर थक गए हैं, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती तो मजा आ जाता। प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक काम करो, जेल में इसके लिए एक होटल खोल दो और इसके नाम पर। खुश हो गया। नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति आया, आपको क्या चाहिए? दूसरे ने कहा देखो ये 3 साल से आया हूं लेकिन एक जोड़ी कपड़ा पहन रहा हूं, इसमें बदबू आ रही है, कुछ जींस टी शर्ट का इंतजाम हो जाता तो मजा आ जाता। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके लिए एक गारमेंट की दुकान यहां पर खड़ी कर दो, जो कपड़ा पहनना है पहनेगा। नेक्स्ट तीसरा आया, तुमको क्या चाहिए? तीसरे ने कहा देखो यहां सुबह से शाम तक काम करवाते हैं, केवल 10 रुपया देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता तो मजा आ जाता। कितना चाहिए? 1-2 लाख। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 10 लाख दे दो इसे। चलो चौथा आया, आपको क्या चाहिए? चौथे ने कहा आप जो मांगूंगा वह देंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसलिए तो आया हूं, जो मांगूंगा वह देंगे? हां इसीलिए तो आया हूं। तो चौथे व्यक्ति ने कहा एक काम करो मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। बताइए बुद्धिमान व्यक्ति कौन निकला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक उसी प्रकार जैसे वह जेल दुख का कारण है, जेल में यदि किसी को पैसे मिल जाए, भोजन मिल जाए, व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता है क्योंकि जेल में है। वैसे ही हम यह भौतिक जगत रूपी जेल में बंधे हुए हैं और इस जेल में रहकर कुछ लोग धनी होना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छे से जा भोजन करना चाहते हैं, अच्छे से कपड़ा चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद वे दुखी के दुखी रहेंगे क्योंकि जेल में है। बुद्धिमान व्यक्ति इस भौतिक जगत रूपी जेल से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर अपने असली घर, अपने असली धाम गोलोक धाम में जाने के लिए तैयारी करता है। और व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता है जब तक वे अपने असली घर में वापस नहीं जाता है, अपने असली पिता से नहीं मिलता है। इसलिए बिल स्वर्गम, जो बिल है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति कभी बाहर नहीं आता। तब एक प्रश्न होता है, ठीक है हम अपने असली घर में चले गए, फिर उसकी गारंटी क्या है हम वहां से वापस कभी नहीं आएंगे? तब गारंटी भगवान देते हैं, कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं दे रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े खड़े भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एक बार मेरे धाम में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, आओ आओ मेरे धाम में आओ। भगवान हम सबको बुला रहे हैं आइए, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं चाहते हम उनके पास न जाए। क्या एक पिता अपने पुत्र को अपने घर पर रखना नहीं चाहता है? कैसा भी पुत्र हो लेकिन पिताजी जो होते हैं उसको अपने घर पर रखना चाहते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं आइए आइए, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि भगवान के धाम में फैक्ट्री में कुछ कारीगर कम पड़ गए इसलिए बुला रहे हैं। बुलाते हैं भगवान हमारे लिए, भगवान देख रहे हैं कि ये बेचारे कितने दुखी है। इसलिए गीता में कहते हैं कितना भी पाप क्यों न किया हो, सर्व धर्मान परित्यज्यम, ये सब कुछ छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भी हो मोक्ष इष्यामि मा सुच, डरो मत मेरे धाम में आओ सब ठीक हो जाएगा। तो प्रभु गारंटी क्या है आपके पास आएंगे फिर यहां दुख दुखी संसार में नहीं आना पड़ेगा? गारंटी मैं देता हूं। कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार कोई मेरे धाम में आ गया वे कभी यहां पर वापस नहीं आएगा, ये भगवान की अपनी गारंटी है और भगवान की अपनी सिग्नेचर है। इसलिए भगवान का धाम रूपी एक ऐसा बिल है जहां पर व्यक्ति जाता है तो कभी वापस नहीं आता। तो ये बात तो समझ में आ गई, परंतु अंत में एक प्रश्न रह गया कि ठीक है भगवान का धाम बहुत अच्छा है, वहां जाने के बाद इस दुख रूपी जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा, तो फिर वहां हम कैसे जा सकते हैं? ये जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे धाम में तो यार जाना चाहिए, तो वहां हम कैसे जा सकते हैं? तो भगवान अपने धाम में किस प्रकार से व्यक्ति जा सकता है भगवद गीता में बताते हैं। कहते यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की भक्ति करते हैं वह देवताओं के लोक में जाते हैं, स्वर्ग में, और कुछ समय तक रहते हैं, फिर से पृथ्वी में आ जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, और जो पितृ की भक्ति करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत लोक में जाते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं यान्ति मध्या जिनोपि माम, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे धाम में आ जाते हैं। यदि हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस, और कोई कष्ट नहीं है, केवल यह मंत्र जपते रहिए भगवान के धाम में, क्योंकि ये मंत्र उस भगवान का है। नहीं तो इस संसार में कुछ लोग होते हैं, एक बार एक दिल्ली में सत्य घटना है, एक गुरु थे, उनके पास चेला गया, गुरुजी कुछ कृपा कीजिए। गुरुजी ने कहा, कान में कुछ मंत्र बताया, गुरु मंत्र, कहा कि ये मेरे मंत्र का जाप करो, तुम्हें वैकुंठ गोलोक मिल जाएगा। चेले को कहा, मेरे मंत्र का जाप करो, गोलोक मिल जाएगा। चेले ने कहा, गुरुजी वाह, इतनी बड़ी वस्तु दे दी, मैं तो आपके ऊपर खुश हो गया, जाओ मैं तुम्हें पूरा महाराष्ट्र दे देता हूं। गुरुजी ने कहा, ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है? तो चेले ने कहा, गुरुजी तो क्या गोलोक आपके बाप का है? क्या आपका नाम लूंगा तो वहां चला जाऊंगा? गोलोक में जाना है तो गोलोकाधिपति गोविंद का, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे। तो इस प्रकार नारद मुनि का यह जो बील है वास्तव में भगवान का धाम है, और भगवान का धाम ही परम गति है। यदि वास्तव में मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हो, भगवान के धाम को प्राप्त कर लो, और उसके धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा।